Blessed Savior, Om Namah Siddhaya, Om Namah Siddhaya, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vajrayanam, Namo Loe Savasahunam, Nithaviyattakamam, Viramnami Unapattasavattam, Anubhagasavihatim, Jahovai Samparuvemo. यह श्री बीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अनुभाग विभक्ति नाम की है, उसमें हम 72 पृष्ठ पर आ गए। 72 हमने उत्कृष्ट स्पर्शनानुगम देखा था, अब जघन्य स्पर्शनानुगम चलेगा। ओग की अपेक्षा जघन्य किसके होता है? सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में, वो तो संयत है, मनुष्य है, गिने चुने हैं, तो वो तो लोक का असंख्यात भाग ही होगा। अतीत काल की अपेक्षा भी वो कितने क्षेत्र में रहेंगे देखो। अब प्रकृत में जघन्य से प्रयोजन है, निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, तो लोक के असंख्यात वे भाग क्षेत्र का स्पर्शन किया है, अतीत काल की अपेक्षा भी उतना ही होगा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने सर्व लोक का स्पर्शन किया है, वो दसवें गुणस्थान के अंतिम समय वालों को छोड़ो, बाकी सारे अजघन्य ही है। इसी प्रकार अब ऐसी मार्गणाएं ली है कि जिनमें वो दसवां गुणस्थान घटित होगा और पूरा लोग भी। इसी प्रकार कायोगी, औदारिक कायोगी, नपुसक वेदी, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी, अचक्षुदर्शनी, भव्य और आहारकों में जानना चाहिए। यह ऐसी मार्गणा है जो पूरे लोक में भी पाई जाती है और जिसमें दसवां गुणस्थान भी है। हाँ, इसलिए स्त्रीवेद पुरुषवेद को नहीं लिया, क्योंकि वो तो पंचेंद्रिय में पाया जाता है और वो लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं। विशेषार्थ ओग से मोहनीय का जघन्य अनुभाग क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक संयत जीवों के होता है, इसलिए इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। और अजघन्य अनुभाग अन्य सब मोह की सत्ता वाले जीवों के होता है, इसलिए इनका स्पर्शन सब लोग कहा है। ये तो ओघ में बताया। अब आदेश में उसका अपना अपना जघन्य होता है। आदेश की अपेक्षा नारकियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का भंग क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात भाग ही है। असंगी भी आएंगे तो भी पहले नरक में आते हैं, और वो जो डिस्टेंस है मध्यलोक से पहले नरक तक का छोटा है, कुछ योजनों में है, संख्यात योजन है ना, तो लोक का असंख्यात भाग होता है। अब नारकियों में अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का ये वर्तमान क्षेत्र बताया, अपने अपने नरकों में रहते हैं, तो लोक का असंख्यात भाग, और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। एक फुल स्टॉप देना यहाँ, क्या कहते हैं, नारकियों में अजघन्य कहाँ रहते हैं? तो सभी नरकों में रहते हैं, तो उसका 14 भागों में से 6 भाग कैसे हुआ? अजघन्य के मारणांतिक और उपपाद भी, क्योंकि 6 राजू नीचे है ना, 7वां नरक 6 राजू नीचे है, इसलिए कुछ कम 6 लिया। पहली पृथ्वी में क्षेत्र के समान भंग है, यानी पहली पृथ्वी के लिए तो लोक का संख्या तो अभागी होगा, मारणांतिक की अपेक्षा भी, उपपाद की अपेक्षा भी। दूसरी पृथ्वी से लेकर सातवीं तक जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, वहां जघन्य किसके होता है? हाँ, जो विसंयोजना करने वाले जीवों का। तो अपने अपने नरकों में तो लोक का असंख्या तो अभाग ही घटित होगा, तथा वह जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन जानना चाहिए। अपना अपना यानी दूसरे नरक के लिए एक राजू, यानी 14 भागों में से एक भाग, ऐसा कहेंगे। विशेषार्थ, जो हत समुत्पत्ति कर्म वाले, देखो हत समुत्पत्ति का अर्थ होता है जिन्होंने अनुभाग को घटाया है, उस पर्याय के योग्य। असंगी की बात है तो उस पर्याय के योग्य अनुभाग घटाया है। जो हत समुत्पत्ति कर्म वाले असंगी जीव नरक में उत्पन्न होते हैं, इनके मोहनी का जघन्य अनुभाग होता है। नारकियों की अपेक्षा जघन्य किसके होता है? असंगी में से नरक में आए हुए जीवों का। यतः ऐसे जीव प्रथम नरक में ही उत्पन्न होते हैं, अतः सामान्य से नारकियों में मोहनी के जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है। नारकियों का क्षेत्र कितना है? लोक का संख्या तो ऐसा नहीं समझना रहे अधोलोक में सब पूरे नारकी है तो लोक का संख्या तो अभाव नहीं, क्योंकि दो दो नरकों में या दो दो पृथ्वियों में, किसी एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी के बीच में असंख्यात योजनाओं का अंतराल होता है। उसके सामने ये पृथ्वी की जो मोटाई है वो कुछ नहीं उसके सामने। यहाँ प्रथम नरक है, परंतु हमने सभी नरकों का क्षेत्र देखा, वो मैं बताना चाहती थी। कुछ प्रश्न है? हाँ, वो तो गैप में तो देखो एक पृथ्वी है और दूसरी पृथ्वी है। प्रश्न ऐसा है कि दो पृथ्वियों के या दो नरकों के बीच में क्या है? यदि नरकों के बीच में कहे तो कोई एक पृथ्वी है तो उसमें नरकों के भी लेयर्स है, पातड़े होते हैं। तो दो पृथ्वियों के, दो नरकों के बीच में, लेयर के बीच में तो पृथ्वी है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे हैं दो छह पृथ्वी है ना, अधोलोक में जो ऐसी छह पृथ्वियां हैं, तो प्रत्येक पृथ्वी के अपने अपने नीचे 20-20-20 60,000 योजन का तो वात वलय है। फिर वो 60,000 योजन का छोड़ दो और नीचे की पृथ्वी के बीच में वो अंतराल है, वहां वो तो सूक्ष्म जीव तो सभी जगह है। हाँ, 20-20,000 का, हाँ वो वात वलय है, परंतु ये वात वलय और नीचे की पृथ्वी, इसमें असंख्यात योजनाओं का अंतराल है। वहाँ कुछ नहीं, आकाश है और वहाँ सूक्ष्म जीव है सभी, वहाँ अन्य कोई रचना नहीं है। हाँ नहीं, सूक्ष्म वायु का एक हो गए पर ऐसे बादल नहीं हो गए। जैसे हम ऊपर पांच राज्यों में वायु का एक देखते हैं, ऐसा वो नीचे नहीं है। हाँ, बादल पर्याप्त। पृथ्वी, हाँ हाँ, पहली पृथ्वी के नीचे 20,000 60,000 योजन के वात वलय है। दूसरे नंबर के ऊपर और ये वात वलय के नीचे कुछ नहीं है, अंतराल है बस, और उसमें सारे सूक्ष्म जीव तो रहेंगे ही। विशेषार्थ, ये हमने देखा था ना सामान्य से, चौथी लाइन में आए विशेषार्थ के पेज नंबर 72। तथा सामान्य से नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम 6/14 राजू प्रमाण है, क्योंकि सातवां नरक 6 राजू नीचे है, कोई मरकर वहां तक जाता है मारणांतिक के सॉरी नीचे तक जाता है उपपाद में, और नीचे से कोई मारणांतिक करता है तो छह राजू ऊपर तक करता है, क्योंकि वो मरकर तो मनुष्य में या तिर्यंच में आएंगे, नार सातवें नरक के तो नियम से तिर्यंच में आएंगे। इसलिए 6/14 अतः इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। प्रथम नरक में दोनों प्रकार के अनुभाग वालों का स्पर्शन, दोनों प्रकार के ने जघन्य और अजघन्य दोनों प्रकार के अनुभाग वालों का स्पर्शन 72 पेज। लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। दूसरे आदि नरकों में मिला जाए बेन, हाँ नीचे से पांचवी लाइन चल रही है हमारी। दूसरे आदि नरकों में जो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं उनके जघन्य अनुभाग होता है। पहले में तो असंगी में से आया हुआ लिया हत समुत्पत्तिक वाला, अब दूसरे से लेकर सातवें तक जघन्य किसके होता है, तो जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। यथ ऐसे जीवों का मारणांतिक पद की अपेक्षा भी स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग से अधिक नहीं होता, अतः द्वितीय आदि नरकों में जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण कहा है। और जिस नरक का जो स्पर्शन है वह वहां अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन है यह स्पष्ट ही है। तो मेरा पूछना है सातवें नरक के लिए जघन्य अनुभाग विभक्ति का स्पर्शन कितना होगा, सातवें नरक के लिए कितना होगा, क्यों छह राजू क्यों नहीं? सातवें नरक वाला जीव मिथ्यात्व में ही जाके मारणांतिक करेगा, और यहां बात किसकी चल रही, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले के जघन्य है, तो उसके अपने अपने नरक में उसका जघन्य का क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे तो लोक का असंख्यात भाग होगा। अजघन्य के लिए, अजघन्य के लिए तो मारणांतिक करता है वो तो छह राजू होगा, 6/14 उसमें घटित होगा। बात कुछ ख्याल में आती है ना? लोक का असंख्यात भाग अपने अपने वर्तमान का, वर्तमान का आप देखो दूसरे आदि नरकों में जो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं उनके जघन्य अनुभाग, यथा ऐसे जीवों का मारणांतिक पद की अपेक्षा भी स्पर्शन। अच्छा लोक कैसा, ये जीवों की संख्या कम होने से वो लोक का असंख्यात भाग ही घटित किया। देखो ऊपर क्या लिखा है, विशेषांक क्षेत्र के समान है ऐसा ही लिखा है। द्वितीय आदि नरकों में जघन्य अनुभाग वालों का भी स्पर्शन लोक का असंख्यात भाग का, क्योंकि वहां वो जीव कम हो गए और उनमें से भी मारणांतिक समय तक वो विसंयोजना वाले रहना चाहिए, और दूसरी बात जितने मरने वाले हैं उनमें से विसंयोजना वाले होने चाहिए और मारणांतिक भी करना चाहिए, इसलिए इसको असंख्यात भाग ही कहा। अजघन्य के लिए वो जितने डिस्टेंस पे उसकी बात करें, बहुत अच्छा ऊपर भी उन्होंने बताया था दूसरी से लेकर सातवीं तक। हाँ असंख्यात है फिर भी अन्य जीवों के असंख्यात विभाग हो गए, और वो भी विसंयोजना में भी जघन्य अनुभाग करने वाले होने चाहिए, मिनिमम पॉसिबल करने वाले तिर्यंचों में। तिर्यंचों में जघन्य किसको होता है पहले ये सोचेंगे, याद है कुछ? हाँ सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, तिर्यंचों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने सब लोक का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो जघन्य वाले भी अनंत है और अजघन्य वाले भी अनंत है, तो पूरा लोक उन्होंने, सूक्ष्म एकेंद्रिय तो सर्वत्र है, सूक्ष्म एकेंद्रिय में से जघन्य करके अन्यत्र उत्पन्न होने वाले भी उन्हीं के, वो तो पूरा लोक होता ही, अन्य सूक्ष्म में भी जाने वाले। इसी प्रकार ईसा हो रहा, इसी प्रकार एकेंद्रिय बादर, एकेंद्रिय बादर, एकेंद्रिय पर्याप्त बादर, एकेंद्रिय अपर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय, सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त, सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक बादर, पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, जल का एक बादर, जल का एक। आप पूछेंगे ये बादर को क्यों लिया, बादर तो सब जगह रहते नहीं है, तो पूरा लोक उसमें भी कैसे घटित होगा। हाँ, सूक्ष्म में जिन्होंने जघन्य किया है और बादर में जन्मने वाले हैं, तो लोक के किसी भी कोने से बादर जहां रहते हैं वहां तक उनका वो उपपाद पद पाया जाएगा, तो उस अपेक्षा पूरा लोक घटित होगा। तो बादर जल का, हाँ, मारणांतिक, मारणांतिक करेंगे तब वो सूक्ष्म कहलाएंगे, उपपाद कहेंगे तो बादर हो जाएगा। ख्याल में आती है ना बात, करेंगे वो मारणांतिक, वे भी करेंगे, परंतु वो तब उनकी मारगणा सूक्ष्म कहेंगे हम उनको। सूक्ष्म रूप से मर गए, बादर में जन्मे, तो ग्रहगति के पहले ही समय से उनको हम बादर जीव कहेंगे। बादर जल का एक बादर, जल का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त। मादरों में पर्याप्त उनको छोड़ा है यहां पर। देखो ऊपर भी हमने पृथ्वी कायिक में बादर, पृथ्वी कायिक में पर्याप्त को छोड़ा था, बादर जल का एक में भी पर्याप्त को छोड़ा, तेजस का एक बादर, तेजस का एक बादर, तेजस का एक अपर्याप्त, अपर्याप्त उनको लिया है बादर में। सूक्ष्म, क्योंकि उनकी संख्या भी ज्यादा है, सूक्ष्म तेजस का एक, सूक्ष्म तेजस का एक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस का एक अपर्याप्त, वायु का एक बादर, वायु का एक बादर, वायु का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त, सब वनस्पति का एक, सब निगोदिया औदारिक मिश्र का योगी, कार्मण का योगी, मति अज्ञानी, श्रुत अज्ञानी, असंयत, कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले, कापोत लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, ये भव्य को क्यों छोड़ा। हाँ भानु बहन, भव्य भी तो पड़े हैं ना निगोद में, तो उनके क्यों छोड़ा। हम जघन्य देख रहे हैं तो भव्यों में जघन्य कहाँ होगा, सूक्ष्म सांप्राय में, इसमें भी भव्य पाए जाएंगे, परंतु उस अपेक्षा से सूक्ष्म सांप्राय में सबसे जघन्य में जघन्य है। इसलिए जिस मार्गणा में दसवा गुणस्थान भी है, ऐसी मार्गणाओं को यहां नहीं लिया है। मिथ्या दृष्टि, असंज्ञ, अनाहार को में जानना चाहिए। बादर एकेंद्रिय पर्याप्त लिए तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्त में बादर निगोद पर्याप्त आते हैं, कि उनकी संख्या ज्यादा होती है। और बाकी जो अन्य कायिक है उनमें अपर्याप्त उनको लिया है केवल। विशेषार्थ तिर्यंचों में जो सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त जीव, एकेंद्रिय का नौ बराबर करना, हत समुत्पत्ति कर्म वाले होते हैं, उनके मुनि का जघन्य अनुभाग होता है। देखो अन्य पर्याय में से सूक्ष्म एकेंद्रिय में आते हैं तो उनका अनुभाग का घटना शुरू होता है और फिर वो जघन्य अनुभाग हो लेता है, तो उसको कहेंगे हत समुत्पत्ति। हत यानी घात, अनुभाग का घात होना। हमने निषेको में भी देखा था स्थिति में, वहां भी हत समुत्पत्ति शब्द आया था। और ये जिनमें इस अनुभाग के साथ उत्पन्न होते हैं, यानी ये सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त जीव मरकर जिन अन्य मार्गणाओं में उत्पन्न होते हैं जघन्य के साथ, उनमें भी जघन्य अनुभाग होता है। यथा ऐसे जीवों का स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण संभव है, अतः तिर्यंचों में जघन्य अनुभाग वालों का सर्वलोक प्रमाण स्पर्शन कहा। तथा तिर्यंच सर्वलोक में पाए जाते हैं, अतः इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन भी सब लोग प्रमाण कहा है, क्योंकि ये सारे एकेंद्रीय सूक्ष्म है जो कोई है वो सारे तिर्यंच ही है। यहाँ तिर्यंचों के समान अन्य जिन मार्गणाओं में मोहनीय के जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों के स्पर्शन के जानने की सूचना की है, वहां इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। अब ये तिर्यंचों की बात हो गई। अब जघन्य और अजघन्य अनुभाग वाले सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और मनुष्य अपर्याप्त कौन है? लोक के असंख्यात विभाग का और सर्वलोक का स्पर्शन किया है। इसी प्रकार तो ऊपर उनकी लिस्ट क्यों नहीं बताई थी? क्योंकि ऊपर जो मार्गणाएं थी उसका तो जघन्य तो कितना था, लोक का पूरा लोक, जघन्य भी पूरा लोक और अजघन्य भी पूरा लोक, और इसमें नहीं, उसमें वर्तमान क्षेत्र भी पूरा लोक और स्पर्शन भी पूरा लोक, और यहाँ पर वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग और स्पर्शन पूरा लोक, यानी क्षेत्र और स्पर्शन में डिफरेंस है, इसलिए ये मार्गणाओं को अलग निकाला। और ऊपर हमने सब लोग देखा था तो क्षेत्र भी सर्वलोक था स्पर्शन भी। इसी प्रकार सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय हुआ, पंचेंद्रिय करना उसको, पंचेंद्रिय अपर्याप्त या भी नहीं ठीक करना, क्या कहते हैं, सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, ये इनको क्यों अलग निकाला? क्योंकि उनका वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यात भाग है, पूरा लोक नहीं, वर्तमान में सब जगह बादर अपर्याप्तों को पूरा लोक कहा है। बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्तों को भी लिया था उसमें, तो उनकी संख्या ज्यादा होने से वो उपपाद संभव होगा, संख्या की अपेक्षा लिया वहां पर। तो यहां लेते हैं विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर जल का एक पर्याप्त, बादर तेजस का एक पर्याप्त। भानुबेन आपको बताना इनमें किसको छोड़ा है, हा? देखो हम पढ़ रहे हैं अभी, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लिया, बादर जल का एक पर्याप्त लिया, बादर तेजस का एक पर्याप्त लिया, बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त लिया और तरस अपर्याप्त लिया, हाँ, वायु का एक को छोड़ा क्योंकि वो लोक के संख्यात विभाग में रहते। विशेषार्थ, जो हत समुत्पत्ति कर्म वाले सूक्ष्म एकेंद्रिय अपर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंचों में और मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होते हैं, और यदि उन्होंने अनुभाग को नहीं बढ़ाया है तो उनके जघन्य अनुभाग होता है, जब तक बढ़ाकर नहीं बांधेंगे तब तक उनका जघन्य होगा। ऐसे जीवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग और अतीत स्पर्शन सब लोक प्रमाण संभव है, क्योंकि पूरे लोक में से कहीं से भी आएंगे, इनमें उत्पन्न होंगे, तो उपपाद की अपेक्षा हम कहेंगे सब लोक। अतः इनमें जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। तथा इन मार्गणाओं का स्पर्शन भी इतना ही है। अतः इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का भी स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। जैसे जघन्य है, सब जगह से कहीं से भी आए हैं, अजघन्य वाले भी आएंगे तो अजघन्य का भी पूरा लोक क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ सब विकलेन्द्रिय आदि जितनी अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह दोनों प्रकार का स्पर्शन बन जाता है। क्षेत्र तो लोक का असंख्यात भाग होगा वर्तमान का, परंतु उपपाद की अपेक्षा वो तो सब लोग। अजघन्य में तो मारणांतिक भी ले सकते हैं, मारणांतिक करके सूक्ष्म में जाएंगे तो वो भी इन जीवों में मारणांतिक में भी अजघन्य होगा। बादर, हाँ बादर एकेंद्रिय पर्याप्त को इसलिए छोड़ा है, सभी बादर एकेंद्रिय पर्याप्त लेंगे तो उसमें तो निगोदों की संख्या आती है, जिनकी संख्या अनंत होने से वर्तमान क्षेत्र भी पूरा लोक बताया उन्होंने, इसलिए उनको उसके ऊपर की लिस्ट में लिया था। 113 नंबर वाला जो पैराग्राफ था उनको लिया था, क्योंकि जब सभी बादर एकेंद्रिय पर्याप्त उनको लेते हैं तो उसमें तो निगोद मेजोरिटी तो उन्हीं की हो जाती है, एक एक शरीर में अनंत जीव है ना, तो उनकी अनंतता बहुत ज्यादा है, तो उनके सबके हम अवगाहना कैलकुलेट करेंगे। हाँ बादर आपका कहना है, बादर जीव जो है वायु का एक है, अग्नि का एक है, जल का एक है, पर्याप्त है, उनकी संख्या अल्प है, संख्या भी अल्प है और उनको वर्तमान में रहने का ठिकाना भी लोक का संख्या था। हाँ उपपाद की अपेक्षा अगर हम कहेंगे तो भी ऐसे जीव कम है। हाँ जिन्होंने हत समुत्पत्ति किया है ऐसे जीव किसी भी पर्याय में उत्पन्न हो सकते हैं, है ना, तो ऐसे जीव जो इनमें उत्पन्न होने वाले हैं उनको भी वर्तमान का क्षेत्र एट अ टाइम कितने हो गए, अतीत में तो सर्वलोक होगा ही, लिखा है ना सर्वलोक, अतीत में तो सब लोग घटित होता है क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो आए हैं ना जीव उसमें, वहां तो लिखा उन मार्गणाओं का भी स्पर्शन उतना है, इसलिए जघन्य भी और अजघन्य भी स्पर्शन तो पूरा लोक होता है। पर मैंने ऐसा बताया था कि अजघन्य में तो मारणांतिक भी संभव है, जघन्य में तो केवल हमने उपपाद को लिया था, उसके साथ उसमें जन्मने वाले लोकाकाश के कहीं कोने से भी वो बादर में आते हैं तो पहले मारणांतिक करते हैं और फिर वो छोड़ दिया तो उपपाद यानी विग्रह गति में जा रहे भी, पहला समय दूसरा समय, तो उनके प्रदेश तो फैले है पूरे, उस जो दो दंड कहते हैं उपपाद का दंड, तो उसमें प्रदेश फैले है और बाद में मूल शरीर में सिकुड़ जाते हैं, उस अपेक्षा पूरा लोक घटित होता है। यहां सब विकलेन्द्रिय आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उसमें यह दोनों प्रकार का स्पर्शन बन जाता है, अतः इनका कथन पूर्वोक्त प्रकार से जानने की सूचना की है। अब जघन्य अनुभाग विभक्ति वाले सामान्य मनुष्य, जब मनुष्यों की बात आती है और सामान्य कहो या पर्याप्त कहो या मनुष्य नहीं कहो तो उसमें तो दसवां गुण स्थान है, तो जघन्य उनका वहां पर होगा। तो सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में क्षेत्र के समान भंग है, यानी लोक का असंख्यात भाग। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का ये वर्तमान क्षेत्र और सर्व लोक का स्पर्शन किया है। अजघन्य वाले तो बाकी सभी मनुष्य है तो उनमें तो उपपाद भी होगा और मारणांतिक भी होगा। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त ऐसी मार्गणाएं ली है कि जिनमें वो दसवां गुणस्थान संभव है क्षपक वाला। त्रस त्रस पर्याप्त पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, स्त्रीवेदी पुरुषवेदी। देखो स्त्रीवेदी पुरुषवेदी में तो दसवां गुणस्थान नहीं है, परंतु उसके वेद के उदय के अंतिम समय में ये पॉसिबल है, वो भी श्रेणी में होता है, तो उनका भी लोक का असंख्यातवा भाग घटित होगा जघन्य के लिए, और मरकर कहीं किसी पर्याय में जाते हैं तो पूरा लोक घटित होगा। यानी इनमें जन्मने वाले तो कहीं से भी आते हैं, तो स्त्री वेद के साथ जन्मने वाले जीव ऐसे लेना है। एकेंद्रियों में से, सूक्ष्म में से स्त्री वेदी वाले कौन से गति वाले स्त्री वेदी हो गए? देवों को लेना, एकेंद्रियों में से आएंगे वहां पर, हाँ। तो वहां से आने वालों में मनुष्य और तिर्यंश को लेना, और अजगन्य के लिए जाने वालों के लिए वो तो सब कहीं भी जा सकते हैं। चक्षुदर्शनी, देखो अचक्षुदर्शनी को पहले वाला लिया था, अब यहाँ चक्षुदर्शनी वालों को लिया है, और संगी जीवों में जानना चाहिए, क्योंकि उनका वर्तमान का क्षेत्र तो लोक का असंख्यातवा भाग है, जघन्य वाला भी लोक का असंख्यातवा, और अजघन्य के लिए पूरा लोक कहेंगे। इतनी विशेषता है कि इनमें विहार की अपेक्षा, ये विहार की अपेक्षा उसमें और जोड़ देना, 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग स्पर्शन कहना चाहिए। विहार में भी देवों को मुख्य करके वो बात बताते हैं। विशेषार्थ, मनुष्य त्रिक में शपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों के ही जघन्य अनुभाग होता है, यतः इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण है। अतः मनुष्य त्रिक में जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। ये अपर्याप्त मनुष्यों को क्यों छोड़ा? 10वां गुणस्थान नहीं है उनमें, जघन्य कब होता है? सूक्ष्म एकेंद्रिय में से आने वाले, तो उनमें मनुष्य तो लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, परंतु अपर्याप्त मनुष्यों में कितना क्षेत्र घटित होगा? पूरा लोक। क्यों? कहीं से भी उत्पन्न होगी ना मनुष्य अपर्याप्त में, इसलिए लेना। पूरे लोक में से सूक्ष्म एकेंद्रियों ने जिन्होंने घटित जघन्य कर दिया है, मनुष्य अपर्याप्तों के लिए जघन्य तो वही कहलाएगा, क्षेत्र की ही बात। उपपाद में क्या लेना है? जैसे हमने तिर्यंच अपर्याप्त लिया था, सर्वलोक का लिखा है ना, स्पर्शन ही मैं बता रही हूँ, क्षेत्र वर्तमान का क्षेत्र, वर्तमान में लोक का असंख्यातवा भाग। देखो वो तो है तो मनुष्य लोक के बाहर भी, परंतु उन जीवों की संख्या अल्प है, इसलिए लोक का असंख्यातवा भाग लिया। उपपाद में, उपपाद में मनुष्य जीव इसके बाहर होगे कि नहीं, ढाई द्वीप के बाहर, हाँ कहीं से भी आ सकते, तो वहां तो पूरे लोक में से कहीं से भी आते हैं, परंतु उनकी संख्या अल्प होने से तो लोक का असंख्या तो भाग का। उपपाद की अपेक्षा, उपपाद की अपेक्षा लोक के कहीं से भी वो मनुष्य अपर्याप्त में आ सकते हैं, वो स्पर्शन में, क्षेत्र में असंख्या तो भाग कहना। ये जो असंख्यातवा भाग लिखा है ना, तो उनमें उन्होंने वर्तमान क्षेत्र में उपपाद या मारणांतिक वहां नहीं लिया है, और स्पर्शन में वो सब ले लेते हैं। देखो मनुष्य त्रिक हम पढ़ रहे थे विशेषार्थ में 74 पृष्ठ पर, कहते यतः इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, प्रमाण करना प्रगाण हुआ, प्रमाण है। अतः मनुष्य त्रिक में जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण है, तथा मनुष्यत्रिक का वर्तमान स्पर्शन, लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण है। मनुष्यत्रिक का ही स्पर्शन, वर्तमान स्पर्शन और अतीत स्पर्शन, इसलिए इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ पंचेंद्रिय आदि जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें मनुष्यत्रिक के समान स्पर्शन घटित हो जाता है, अतः उनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन मनुष्यत्रिक के समान कहा है। मात्र पंचेंद्रिय आदि मार्गणाओं में विहार पद की अपेक्षा, वो विहारवत स्वस्थान जिसको कहते हैं उसको पद कहते हैं। ये 10 पद हमने गिनाए थे, 7 तो मारणांतिक होते हैं, एक उपपाद है, एक स्वस्थान स्वस्थान, एक विहारवत स्वस्थान। तो यहाँ विहार पद की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजु प्रमाण स्पर्शन भी संभव है, इसलिए इन मार्गणाओं में अजघन्य अनुभाग वाले जीवों का स्पर्शन कुछ कम 8/14 राजु प्रमाण भी जानना चाहिए। अब देवों में, पहले गति मार्गणाएं चल रही थी ना, देवों में जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। कितना है क्षेत्र? लोक का असंख्यात भाग। यहाँ विहारवत लेना कि नहीं लेना? हाँ, जघन्य कौन से होते? असंगी में से आए हुए। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात विभाग का 14 भागों में से कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग का स्पर्शन किया है। ये कुछ कम 9 जो लिखा है मारणांतिक की अपेक्षा लिया। इसी प्रकार भवनवासी और व्यंतरों में जानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में ही वो जघन्य वाले हो गए, असंगी में से आए हुए। इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों में अपना अपना स्पर्शन लेना चाहिए। ज्योतिषी देवों में जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का संख्यात्व भाग। इनमें जघन्य कौन करेगा? विषय योजना वाला। हाँ, तथा इन्होंने 14 राज्यों में से कुछ कम 3.5, देखो अभी इसके लिए 2 ऑप्शन बता रहे ज्योतिषों के लिए, कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8 राजो प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। आपको पता है ऐसा क्यों है जयाबेन? आपको पता है 3.5 क्यों और 8 क्यों कहा? नहीं मालूम? हाँ हाँ, मारणांतिक और उपपाद दोनों नहीं, दोनों में विहार ही लेना है। हाँ, स्वयं जाते हैं तो कहाँ तक जाएंगे? 3.5 कैसे? 2 राजु नीचे और ऊपर 1.5 राजु, सौधर्म ईशान तक। और अन्य देव उनको ले जाए तो 16वें स्वर्ग तक, तो 8 राजु हो जाता है। हाँ, नीचे के 2 और ऊपर के 6। यानी पहला है वो स्वयं जाए तो, और दूसरे अन्य ले जाए, अन्य 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 वाले कुछ कम 8 में ऊपर तक जा सकते हैं, और स्वयं गमन करके जाएंगे। नीचे तो 2 स्वयं जाते ही है, और ऊपर जाने के लिए 6 राजू तक ऊपर जाना है, अन्य देव उनको ले जाएंगे तो जाते हैं। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है। ऊपर 8 नहीं लेना, 2 तो नीचे हमने कैलकुलेट किया ही है, और मध्य लोग यानी वो कहाँ तक गए? 3.5 तक गए, है ना? नीचे और ऊपर 3.5 तो यहाँ हुआ है, यानी मध्य लोग से 1.5 राजू ऊपर स्वयं कमन करके गए थे, तो मध्य लोग से 6 राजू तक जो जाना है तो अन्य देव ले जाएंगे तो जाएंगे। मध्य लोग से ऊपर 6 और नीचे 2, टोटल वो 3.5 उसी में गर्भित हो गए। एक्स्ट्रा जो 3.5 के ऊपर जो एक्स्ट्रा लिए हमने, 4.5 एक्स्ट्रा लिए ना ऊपर, तो वहां जाने के लिए अन्य देवों की मदद से जाएंगे। सौधर्म और ईशान में, अब सौधर्म ईशान और ज्योतिषी में क्या डिफरेंस है? हाँ, जगन्य में डिफरेंस होगा। जगन्य किसके होगा? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और दर्शन मुख की क्षपणा की है, उसके जगन्य होगा। तो जगन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यातवे भाग का और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया, ये विहार की अपेक्षा। अजगन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यातवे भाग का, ये वर्तमान क्षेत्र, 14 भागों में से कुछ कम 8, ये विहार की अपेक्षा, और कुछ कम 9 भाग अजगन्य के लिए लिया है। तो मिथ्या दृष्टि है, मारणांति करेंगे वो ऊपर की पृथ्वी में, इस प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। इसलिए सौधर्म ईशान को अलग निकाला, ये 9 भाग बताना था इसलिए। हाँ, क्या? हाँ, 8 राजू बताए वो देवियों को ऊपर लेके, ऐसा नहीं है, वो स्वयं स्वयं जाते हैं ना। हाँ, ज्योतिषियों के लिए भी 8 राजू बताया है, तो ज्योतिषियों में कोई देवियों को नहीं ले जाता ऊपर, ऊपर के देवों की देवियां है वो सारी कल्पवासी देवियां हैं, ज्योतिषियों की देवियां उनको नहीं चलती। सौधर्म ईशान, दो नीचे 2 राजू जाते हैं और ऊपर 6 राजू जाते हैं। हाँ, और नीचे जाके किसी ने मारणांतिक किया तो पूरा 9 राजू हो जाता है ना। हाँ, ये ऊपर की जो देवियां ले जाते हैं ना, वो सारी जन्म उनका होता है पहले दूसरे स्वर्गों में, उन हाँ सौधर्म ईशान में। ऊपर के जो 16 स्वर्ग तक के जो देवांगनाएं हैं, उनके देवों की, उनको कहते हैं नियोगिनी देवियां, उनका जन्मने का ठिकाना तो पहले दूसरे स्वर्ग में है और वहां से आकर वो ले जाते हैं। हमेशा कहती हूँ ना मैं, वो तो रहते अमेरिका में, हाँ। और यहाँ आके फिर लड़की चुनते और फिर शादी करके ले जाते हैं। अभी तो वहां की भी चलती है वैसे, वहां तो कोई उत्पन्न नहीं होती है देविया, स्वर्गों में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं। हाँ देखो, ज्योतिषी जो देव है उनको ऊपर के जो है ना वकल्पवासी देव, उनको ले जाएंगे तो उनके साथ ये ऊपर तक गमन कर सकते हैं। हाँ, गुलाम नहीं, दोस्त वो कुछ भी, जैसे स्वयं गमन करने की शक्ति नहीं है, वो वहां के देव उनको ले जाते हैं तो जा सकते हैं। सनत इसके लिए सौधर्म ईशान को अलग निकाला कि उनमें एक इंद्रियों में वो तो एक इंद्रिय पर्याय भी बांध सकते हैं, मारणांतिक भी कर सकते। सनत कुमार से लेकर ऊपर के जो है वो तिर्यंच में तो जा सकते हैं परंतु एक इंद्रिय में नहीं जाएंगे, एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंध ही उनके नहीं होगा। तो सनत कुमार से लेकर आरण अच्युत तक के देवों में उत्कृष्ट अनुभाग वालों के समान स्पर्शन है। और आगे के देवों में क्षेत्र के समान स्पर्शन है। देखो हम पढ़ेंगे इसको। विशेषार्थ, सामान्य देवों में जो हत समुत्पत्ति कर्म वाले असंगी जीव मरकर उत्पन्न होते हैं उनके जघन्य अनुभाग उपलब्ध होता है, अतः ऐसे जीवों का स्पर्शन क्षेत्र के समान लोक के असंख्यातवे भाग से अधिक उपलब्ध नहीं होता, अतः यह क्षेत्र के समान कहा है, क्योंकि ये जीव उत्पन्न होते भवनवासी और व्यंतरों में। तो मध्यलोक से मरकर भी ये जो जीव जाएंगे असंगी, तो भी भवनवासी तो पहली पृथ्वी में है और कुछ तो मध्यलोक में है, व्यंतर भी उसके ऊपर तो नहीं है। तथा देवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 राजू प्रमाण बतलाया है। यथा इस सब प्रकार के स्पर्शन के समय मोहिनी की अजघन्य अनुभाग विभक्ति संभव है, अतः इनमें अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा। ये जो जघन्य वालों का तो वो नहीं होगा, क्योंकि जघन्य तो वहाँ उत्पन्न होने के पहले समय से लेकर होता है, जब तक बढ़ाकर बंद नहीं करेगा तब तक। और ये जो विहार है, मारणांतिक है, वो उन जीवों में नहीं घटित होता है। पर्याप्ति पूरी हुए बिना तो विहार नहीं होगा, याले ना? हाँ। भवनवासी और व्यंतर देवों में यह स्पर्शन इसी प्रकार प्राप्त होता है, अतः इनका भंग सामान्य देवों के समान कहा है। सामान्य देवों में जो घटित किया वो इन्हीं की अपेक्षा बताया है। यहाँ इतनी विशेषता अवश्य है कि इन दोनों प्रकार के देवों में वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण, देखो स्व प्रत्यय विहार की अपेक्षा। प्रत्यय किसको कहते हैं? कारण। हाँ हाँ, वो बराबर है। आपने आश्रव को भी प्रत्यय कहा था ना, द्रव्य प्रत्यय, यानी आश्रव के कारण, उसको द्रव्य प्रत्यय कहा था। यानी स्व के कारण जो जाते हैं, स्वयं अपने से जो जाएंगे, स्व प्रत्यय विहार की अपेक्षा कुछ कम 3.5/14 राजू। और पर प्रत्यय विहार तथा वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा नहीं नहीं कुछ कम 8/14 राजू। क्या कहते हैं, वेदना के कारण कितना हो सकता है समुद्घात? अधिक से अधिक 3 गुना। 3 गुना ऐसे आड़ा भी और आगे पीछे भी 3 गुना, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 3×9 ऐसा हो जाएगा पूरी एरिया। हाइट वाइज नहीं बढ़ता है, हाइट वाइज समुद्घात में कोई बढ़ोतरी हो नहीं होती, परंतु ये पूरे टोटल 3 गुने बढ़ेगी, वो तो मैक्सिमम बताया। हो सकता है एक प्रदेश ही शरीर के बाहर निकला वेदना के काल में, 2 प्रदेश निकले, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा किसमें? 8/14। तो यहाँ विहार और विक्रिया इसलिए लिया है, तो वो जब स्वयं गमन करते हैं तो वो मूल शरीर से जाते होते, क्योंकि इसमें देवों में 2 प्रकार बताया ना, एक विहार और एक विक्रिया। तो विक्रिया समुद्घात में भी अन्य के साथ करेंगे समुद्घात। तो वेदना कषाय और वैक्रिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजू, और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 राजू प्रमाण स्पर्श जानना। वेदना उसी के साथ वेदना को ले लेना, विहार करके गए और वेदना किए तो भी वो 8 में गर्भित हो जाएंगे सारे। यानी वेदना में वो 8 नहीं होगे। हाँ, या ऐसा कहेंगे नहीं, विहार करके गए हैं तो मूल शरीर से वहां तक आत्म प्रदेश फैले हुए क्रिएक में भी, और उसमें वेदना का किया उसने, तो जो कोई उनके प्रदेश हो गए थोड़े तो स्प्रेड हो जाएंगे ना उसके। हाँ, देवों की वेदना कहाँ से, अरे होगी ना। होगी, उनके भी है ना असाता वेदना का उदय, तो उनके भी है। नरकों में तो सतत असाता का वेदना रह सकता है, परंतु देवों में सतत साता का नहीं रहता, 6 महीने के बाद तो कुछ ना कुछ होगा ही उनके। तीर्थंकरों के काल में, हाँ किस में? हाँ, परंतु वो कितने, थोड़े काल के लिए। हाँ, ज्योतिषी देवों में, अभी हम ज्योतिषी के पढ़ रहे हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं ना, हाँ स्पेशली जन्म कल्याणक है ना, और केवल ज्ञान में तो तब वो क्षण मात्र के लिए या जो कोई कहते जितना भी, हाँ तो उनके साता होती है। हाँ सभी है नर, क्योंकि मुख्यतः बतानी है ना, अन्यत्र तो अन्यत्र अन्य टाइम में भी होती है, इसलिए ज्योतिषी देवों में अनंतानुबंधी की विसंजना करने वालों के मुनि का जघन्य अनुभाग होता है, क्योंकि ज्योतिषियों में असंगी नहीं उत्पन्न होते हैं और ना ही वो ऊपर उत्पन्न होने वाले उपशम श्रेणी वाले और क्षायिक वाले सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। यतः ऐसे देवों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्व प्रत्यय विहार की अपेक्षा कुछ कम 3.5/14 राजू। देखो जब हम ज्योतिषी कहीं से आते होंगे, सूर्य चंद्र वो तो उनके विमान है, उनके विमान तो छोड़कर विमानों को लेके नहीं जाएंगे ऊपर, उसमें रहने वाले जो ज्योतिषी देव है उनकी बात चल रही। हम कहते नहीं आए सूर्य सूर्य ज्योतिषी चंद्र, इंद्रों के जो हम 100 इंद्र गिनते हैं एक चंद्र एक सूर्य कहते हैं, परंतु वहां का इंद्र लेना, ये जो हमें सूर्य चंद्र दिखाई देते हैं वो तो उनके विमान है। हाँ अतः इनमें जगन्य अनुभाग वालों का उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है, ज्योतिषी देवों में, क्योंकि जगन्य जिन्होंने किया है विसंयोजना जिनके हो चुकी है वो विहार करके जाएंगे तो उनमें भी जगन्य घटित होगा, तथा अजगन्य अनुभाग वालों का यह स्पर्शन तो होता ही है, साथ ही इनके मारणांतिक समुद्घात के समय कुछ कम 9/14 राजु प्रमाण स्पर्श भी संभव है। किसमें? अजगन्य में। क्या जगन्य में यह 9/14 होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना। हाँ हाँ एक इंद्रिय में नहीं जाएंगे, अतः इनका स्पर्शन इसको मिलाकर कहा है। सौधर्म और ऐशान कल्प में वर्तमान की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण विहार आदि की अपेक्षा कुछ कम 8/14 राजु प्रमाण और मारणांतिक समुद्घात की अपेक्षा कुछ कम 9/14 राजु प्रमाण स्पर्शन होता है। अभी हमने पढ़ा था इसको, वो तो 2 बार उपशम श्रेणी और फिर क्षपणा करके आए हुए जीव लिए हैं। ये मारणांतिक में जो लिया है ना 9/14 वो तो अजगन्य में लेना, जगन्य में नहीं लेना। इनमें से जगन्य अनुभाग विभक्ति के समय कुछ कम लिखा आगे कुछ कम 9/14 राजु प्रमाण स्पर्शन संभव नहीं है, क्योंकि जो देव एकेंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं उनके जघन्य अनुभाग विभक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे तो जघन्य तो सम्यक दृष्टियों की है। अतः इस अंतर को ध्यान में रखकर यहाँ दोनों अनुभाग वालों का स्पर्शन कहा है। आगे भी इसी प्रकार स्वामित्व को ध्यान में रखकर जघन्य और अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए। अब काय की अपेक्षा बादर वायु का एक पर्याप्तकों में मुनि कर्म की जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन लोक का संख्यातवा भाग ये वर्तमान का और सर्वलोक है, ये मारणांतिक है और ये अतीत काल की अपेक्षा लेना। विशेषण बादर वायु का एक पर्याप्त जीवों ने लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का और सब लोक का स्पर्शन किया है, इसलिए इनमें दोनों प्रकार के अनुभाग वालों का स्पर्शन उक्त प्रमाण बन जाता है, अतः वह उक्त प्रमाण कहा है। अन्य कायिकों की बात तो उन्होंने एकेंद्रिय के साथ बता चुके थे। वैक्रिय कायोगियों में ये डायरेक्ट उन्होंने योग लिया, कायिकों की अपेक्षा वायु कायिकों की बात बता दी। त्रस काय त्रस पर्याप्त वगैरह तो पहले हो चुके थे, उन्होंने बता चुके थे। वैक्रिय काय योगियों में ये योग मार्गना चल रही है। जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन सौधर्म स्वर्ग के समान है। क्यों? वैक्रिय काय योग में वो असंगी में से आया हुआ नहीं ले सकते। हाँ, तो दो बार उपशम श्रेणी और क्षपना करने वाला जीव लेना है। तो ऐसा जीव सौधर्म स्वर्ग में या उत्पन्न ऊपर कहीं उत्पन्न होगा, तो सौधर्म स्वर्ग के समान है। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट विभक्ति के समान है। वैक्रिय कायोग जब कहते हैं और उसमें अजघन्य है तो देव भी लेना नारकी भी लेना, तो उसका स्पर्शन वैसे घटित करना अजघन्य वालों का। यानी सात राजू ऊपर और छह राजू नीचे सबको ले सकते हैं ना अजघन्य वालों में। वैक्रिय मिश्र कायोगी आहारक आहार हुआ है आहार करेंगे आहारक कायोगी आहारक मिश्र कायोगियों में जघन्य और अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि उनमें ना विहार होगा ना मारणांतिक होगा। किसमें? वैक्रिक मिश्र में। और आहारक आहारक मिश्र तो होते ही मनुष्यों में, तो लोक का असंख्यात भाग होता है। इसी प्रकार अपगत वेदी अकषायी मनपरे ज्ञानी संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत और यथाख्यात संयतों में जानना चाहिए। इन आलोक का असंख्या तो भाग्य घटित होगा। हाँ, वही लेना है। दो बार उपशम श्रेणी आपका प्रश्न है ना, वैक्रिक कायोगियों में जघन्य किसको लेना है? दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ जीव जिसने दर्शन मोह की क्षपणा की है और मरकर जो देवों में उत्पन्न हुआ है उनके वैक्रिक कायोग में किसमें? विहार की अपेक्षा। हाँ, सात राजू क्यों लेना? जगह है परंतु वे विहार नहीं करते ना। हाँ, क्षेत्र उनका अपना रहने का क्षेत्र कितना है? मारणांतिक करते हैं फिर भी। अच्छा, वैक्रिय कायोग में नीचे कितना लेना और ऊपर कितना लेना? देखो, सौधर्म का निकालो। सौधर्म नहीं, स्वामित्व लेते ना हम, सौधर्म सर्वार सिद्धि का देखेंगे हम, जघन्य का स्वामित्व। पंद्रह से आगे हो गए। तिरंचों में देवों में देना है ना, सर्वार सिद्धि तक के देवों। सत्रह के अंत में, अठारह के शुरू में, दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर दर्शन मुनि का क्षपण करे पुनः विवक्षित देवों में उत्पन्न हुआ है वैसे होता है, परंतु उसका मारणांतिक नहीं बताया। क्षेत्र में कितना लिया था हमने उसको? और ऐसा भी ले सकते हैं ना, वो मारणांतिक करेंगे तो भी मनुष्य में करेंगे। चौहत्तर 47 पेज। 74 पेज। सौधर्म ईशान में तो बताया, हाँ वो तो बिहार की अपेक्षा। उत्कृष्ट में क्या देखा था, मैं देखते जरा उत्कृष्ट विभक्ति वालों में क्या लिया था। हाँ 67 में है, देवों में घटित किया था, कैकेयी काय योग में देखेंगे हम। पेज पर वैकरेख का योग कहाँ का, वैकरेख कहाँ, वही मारणांति की अपेक्षा कुछ कम, 13/14 लिया। देखो देवों में ही लेना है, देवों में ही लेना है। हाँ तो इसलिए वहां तो वैकरेख में उत्कृष्ट घटित किए थे, तो उत्कृष्ट तो नारकियों में भी हो सकता था। हाँ अब यहाँ जघन्य जो लेना है, तो वैकरेख मिश्र वालों में जघन्य तो सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में ही है, तो बिहार की अपेक्षा 8/14 हो जाएगा। बिहार की अपेक्षा वो बिहार करते नहीं है ना, दो राजू नीचे और 6 राजू ऊपर, 8 हुआ। वो अपने अपने जगह रहते हैं, उनको उसमें ऐड करेंगे तो भी। हाँ मारणांतिक में ही लेना उनको, केवल मात्र मारणांतिक में ही ले सकते हैं। नौ राजू कैसे लेंगे उनमें, हाँ वो देखो। अच्छा इसलिए नौ गठित कर रहे हैं आप, विहार करके नीचे गए हैं और वो मारणांतिक करेंगे तो 2 राजू तक करेंगे, और सर्वार सिद्धि के करेंगे तो मनुष्य में करेंगे, इसलिए उनका कहना 7 राजू लेना वहाँ ऊपर और नीचे 2 राजू लेना। जगन्यों की संख्या ही कम है, क्योंकि ऐसा वो कहीं घटित किया नहीं उन्होंने। क्योंकि आने वाले भी मनुष्य में जन्मने वाले हैं, हाँ तो वो इतना उनका घटित नहीं होगा ऐसा लगता है। देखो आगे यहाँ कोई लिखा होगा तो देखेंगे। हमने सौधर्म ईशान का पढ़ा ना अभी, यहाँ तो ऐसा लिखा था जघन्य अनुभाग विभक्ति समय 9/14 नहीं होता क्योंकि एकेंद्रियों में नहीं जाते, ये बात बताई थी। ये विशेषांश के नीचे हम पढ़ रहे हैं, नहीं नहीं ये तो हमने काय में भी आ गए, हम 76 में वैकरेख काय योगियों में देख रहे थे। हमने 118 नंबर का पढ़ लिया ना पूरा पैराग्राफ, हाँ विशेषार्थ उसका पढ़ेंगे। सौधर्मादि कल्पों में जघन्य अनुभाग का जो जीव स्वामी होता है वही वैकरेख काय योग में भी उसका स्वामी होता है। अतः वैकरेख काय योग वालों में जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन सौधर्म कल्प के समान कहा है। वैकरेख काय योगियों में अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट के समान है, यह स्पष्ट ही है। यानी वहां वो जघन्य वालों का वो नव वाला नहीं घटित किया है, नहीं लिया। वैकरेख मिश्र काय योगी आदि जीवों का क्षेत्र लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण बतलाया है, इनका स्पर्शन भी इतना ही है क्योंकि वहां न विहार है न मारणांतिक है। अतः इनमें दोनों अनुभाग वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान यानी लोक के असंख्यात विभाग। मूल में कही गई अपगत वेदी आदि अन्य मार्गणाओं में भी यही स्पर्शन घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि वे होते ही लोक के असंख्यात विभाग में। अपगत वेदी वगैरह मनुष्य है, संयत है, थोड़े है, ज्ञान की अपेक्षा विभंग ज्ञानियों में मोनिय की जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का वर्तमान में 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। विभंग ज्ञानी में हम देखते हैं ना कैसे किया था, जगन्य किसको होता है, एक इंद्रिय वाला नहीं ले सकते। हाँ असंगी में से कि भी कहे, हाँ उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, मिथ्यात्व में आया है, और फिर वहां पर वो ग्रेवेक में भेजोगे तो 8 भाग प्रमाण नहीं होगा, अन्य कहीं भी जा सकता है ना वो जी, क्योंकि उनके तो विभंग ज्ञानी ही होगा। वो हमने काल घटित करने के लिए, एक समय काल घटित करने के लिए ग्रेवेक में भेजा था उसको, काल घटित करने के लिए। यहाँ तो जघन्य, वो जब 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, मिथ्यात्व में गया है, और विभंग ज्ञान होता है। मनुष्य में भी अगर विभंग ज्ञान होता है तो उसके तो वही रहेगा। अब ऐसा जो देवों में आया है तो उसका उतना ही रहा। हमने वहां द्रव्यलिंगी बनकर ग्रेवेक में आया है ऐसा लिया था। यहां कहते हैं 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। अजगन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग का 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग का, ये देवों की अपेक्षा, और सर्व लोक का स्पर्शन किया है। विभंग ज्ञानी तो तिर्यंच और मनुष्य भी होंगे, मिथ्या दृष्टि है तो होगा ना मारणादिक की अपेक्षा। अभिनिबोधिक ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानियों में मोनिय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने कौन से ये जीव, शपक सूक्ष्म सांप्राय अंतिम समय लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उनमें तो क्षेत्र भी वही और स्पर्शन भी वही। अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग और 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। देखो अभिनिबोधिक ज्ञानी वगैरह में और जघन्य में मारणांतिक क्यों नहीं लिया? एक इंद्रिय में कहां कराने मारणांतिक, नरकों में से और स्वर्गों में से मारणांतिक करेंगे मध्यलोक तक? यहां वो अपेक्षा नहीं बताई है, विहार लिया। इसी प्रकार अवधि दर्शनी, शुक्ल लेशा वाले, सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि, वेदक सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ल लेशा में 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण स्पर्शन होता है, क्योंकि मध्यलोक तक ही विहार करते हैं, नीचे नहीं जाते। विशेषार्थ, जो विभंग ज्ञानी एक इंद्रियों में मारणांतिक समुद्घात करते हैं उनके जघन्य अनुभाग संभव नहीं है, ये बात है। ऊपर लिखा था ना, अजघन्य में सर्वलोक का लिया था और जघन्य वालों में केवल विहार वाले भी बात ली, उतनी ही ली थी। अतः इनमें जघन्य अनुभाग वाले जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण और कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण कहा है, तथा अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कुछ कम 8/14 राजू और सब लोक प्रमाण कहा है। आभिनिबोधिक ज्ञानी आदि में क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के जघन्य अनुभाग होता है, इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है, तथा आभिनिबोधिक ज्ञानी आदि का जो स्पर्शन है वही यहाँ अजघन्य अनुभाग वालों को वालों का प्राप्त होने से वह उक्त प्रमाण कहा है, यानी उनमें भी लोक का असंख्यात भाग और विहार की अपेक्षा 8/14 लिया। यहाँ अवधि दर्शन आदि अन्य जो मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह स्पर्शन बन जाता है, अतः उनका भंग आभिनिबोधिक ज्ञानी आदि के समान कहा है। मात्र शुक्ल लेशा में कुछ कम 8/14 राजू प्रमाण स्पर्श नहीं प्राप्त होता, अतः उसका निर्देश विशेष रूप से किया है। संयता संयतों में जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये संयता संयतों में जघन्य किसके होता है? हाँ, दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है, क्षायिक समय दृष्टि है, तो संयता संयत जो ऐसा जघन्य वाला मनुष्य होगा कि तिर्यंच होगा? मनुष्य ही होगा, क्योंकि तिर्यंचों में संयता संयत में क्षायिक समय दृष्टि नहीं होते। तिर्यंचों में क्षायिक तो होते हैं, भोग भूमि में चौथा गुण स्थान है, पांचवा नहीं है। अजघन्य विभक्ति वालों ने लोक के असंख्यात भाग वर्तमान का उनका और 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये कुछ कम जो 6 है, संहिता संहितों में कुछ कम 6, तो मारणांतिक तीर्यंच जो मारणांतिक करते हैं मनुष्य भी करेंगे, परंतु तीर्यंचों की मेजोरिटी है ना, इसलिए उसको लिया। अजघन्य जो है पंचेन्द्रिय तीर्यंच जो मरकर 16वें स्वर्ग तक जा सकते, तो 16वें स्वर्ग तक मारणांतिक, क्योंकि ये संहिता संहित है, वहां तक जा सकते अधिक से अधिक। तेजोलेशा में सौधर्म स्वर्ग के समान और पद्मलेशा में सहस्रार के समान भंग है, क्योंकि वहां विहार वगैरह भी घटित होगा। मनुष्यों में भी होती है तेजोलेशा, परंतु हमें विहार की अपेक्षा जो घटित करना है देवों में वो वहां घटित होगा। संसाधन समय दृष्टियों में जघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन क्षेत्र के समान है, यानी लोक का असंख्यात भाग, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति वालों का स्पर्शन अनुत्कृष्ट विभक्ति वालों के समान है, यानी सासादन जो आएंगे नीचे ग्रेवेक से भी आ सकते हैं और नीचे छठे नरक से वहां तक से आ सकते हैं। विशेषार्थ संहिता संहितों में जो 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर संहिता संहित हुए हैं उनके जघन्य अनुभाग होता है। क्षपक की बात नहीं ली, परंतु हमने पहले देखा था स्वामित्व में, देखा था ना जघन्य का स्वामित्व, अभी कहा 18 वगैरह पेज पर कहीं देखा था ना। संयता संयतों को देखना है ना, सामयिक छदोपासना बताया है, वहाँ संहिता संहित नहीं बताया। नहीं, विभंग ज्ञानी हो गए, ये सारे परिहार विशुद्धि वगैरह सब एक साथ उनकी लिस्ट दी होगी। संहिता से है तुमको कहाँ लिखा? संहिता संहित में जानना चाहिए, 18 पेज पर, 26 नंबर का पॉइंट, 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर नीचे उतर कर दर्शन मौखिक क्षपणा करके पीछे आहारक शरीर, और इसी प्रकार परिहार विशुद्धि और संहिता संहित में जानना चाहिए। उतर कर क्षपणा करके संहिता संहित हो, या संहिता संहित होकर क्षपणा की, एक ही बात होगी। हाँ देखो, 18 पेज पर, पेज नंबर 18, और वो पॉइंट नंबर है 26। सपना करने वाला लेना, हम पढ़ेंगे 77 पेज पर, विशेषार्थ संहिता संहितों में जो 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर और उतरकर संहिता संहित हुए हैं, इसमें समझ लेना उन्होंने एक सपना भी कर ली, उनके जघन्य अनुभाग होता है, इसलिए इनके जघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है, तथा संहिता संहितों का जो स्पर्शन है वह यहाँ अजघन्य अनुभाग वालों का बन जाता है, यानी संहिता संहित इन जनरल सभी लेंगे, उनका जो स्पर्शन है तो 16वें स्वर्ग तक मारणांतिक, अतः उक्त प्रमाण कहा है। पीत और पद्मलेशा में सौधर्म और सहस्रार कल्प के समान स्पर्शन है, यह स्पष्ट ही है। सांसाधन सम्यक दृष्टियों में 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीव के जघन्य अनुभाग होता है, अतः यह क्षेत्र के समान कहा है, और अनुत्कृष्ट के समान इनके अजघन्य अनुभाग वालों का स्पर्शन बन जाता है, अतः वह अनुत्कृष्ट के समान कहा है। हमने देखा था ना, वो नरक में से भी मारणांतिक करने वाले हो गए, अनुत्कृष्ट में लिया था उसको, ऊपर 7 क्यों? देखो क्या कहते हैं, जो देव एकेंद्रियों में, ऊपर के एकेंद्रियों में सासाधन के साथ मारणांतिक करेंगे वो भी लेना, 7 राजू ऊपर और नीचे, 6ठी नरक से 5 राजू नीचे, 12 राजू लिए थे। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ, एक क्षेत्र और स्पर्शन की बात यहाँ समाप्त होती है, ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। अब कालानुगम, पहले भी हमने काल देखा था परंतु एक जीव की अपेक्षा देखा था, अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चलेगी। एक जीव की अपेक्षा देखो आता यहाँ क्या कह रहे हैं, जघन्य और उत्कृष्ट, कालानुगम 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट, यहाँ उत्कृष्ट से प्रयोजन है। निर्देश 2 प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। जब हमने उत्कृष्ट में एक जीव की अपेक्षा बात की थी तो उत्कृष्ट किसके होगा, तो जो बंद करता है और अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट रहता है, बाद में नियम से अनुत्कृष्ट हो जाता है, तो लगातार रहने का काल उसका अंतर मुहूर्त है, ज्यादा नहीं है, और अनुत्कृष्ट रहेगा तो एक बार उत्कृष्ट किया है, एक इंद्रिय में चला गया, असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक अनुत्कृष्ट रहा, एक जीव की अपेक्षा बात चली, अब यहां हम नाना जीवों की अपेक्षा देख रहे हैं। उनमें से ओघ से मोनी कर्म की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि हमने देखा था उत्कृष्ट अनुभव विभक्ति वाले जीव सदैव नहीं पाए जाते। ऐसे हो सकता है कि एक भी जीव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाला न हो। अब कोई एक या अनेक एक साथ उन्होंने उत्कृष्ट किया तो अंतर्मूर्त तो ही रहेगा, तो जघन्य वो अंतर्मूर्त, अनेक जीवों की अपेक्षा भी जघन्य काल अंतर्मूर्त। और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के असंख्यात विभाग है। ये पल्ले के असंख्यात विभाग कैसे होता है? एक जीव अधिक से अधिक लगातार रहे तो अंतर्मूर्त तक। ऐसे आवली के असंख्यात विभाग जीव एक के बाद एक के बाद एक के बाद करेंगे तो सबका टोटल होगा पल्ले के असंख्यात विभाग, वो उसका काल घटित होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है, क्योंकि देखो देखो लगातार कितने जीव करेंगे तो आवली के असंख्यात विभाग करते हैं, और एक जीव कितने काल तक चलता है उसका अंतर्मूर्त, तो अंतर्मूर्त मल्टीप्लाइड बाय आवली का असंख्यात विभाग वो पल्ले का असंख्यात विभाग होता है। ये पहले हमने बहुत बार देखा था इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। ये वैकिरिक मिश्र वगैरह में भी जो हमने काल घटित किया था ना, लगातार का काल विशेषार्थ। पहले मुनि की उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का एक जीव की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त बतलाए है, यहाँ भी बताए थे। देखो एक जीव की अपेक्षा यह संभव है कि कभी कुछ ही जीव एक साथ उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले हो और कभी मध्य में अंतर पड़े बिना अनेक जीव उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले हो। यह देखकर यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण कहा है, क्योंकि एक के बाद दूसरा इस प्रकार निरंतर उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले असंख्यात जीव भी होंगे तो उन सबके काल का योग पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। मोहनीय की अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वालों का काल सर्वदा है, यह स्पष्ट ही है, क्योंकि बाकी जो उत्कृष्ट को छोड़ो तो बाकी सारे अनुत्कृष्ट वाले तो है ही है, तो वो हमेशा ही पाए जाएंगे। आदेश से नारकियों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण। देखो उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का एक समय कैसे होगा? ऐसा भी हो सकता है ना, नारकी के अंतिम समय में उत्कृष्ट का बंद किया और मरकर अन्य पर्याय में उत्पन्न हुआ तो एक समय घटित होगा, और नारकी में ही रहते हुए नाना जीव अभी लेना है तो नाना जीव लिए तो एक समय ने एक किसी जीव ने किया और या दो अधिक जीवों ने किया और फिर वो सारे मरकर अन्यत्र गए तो एक समय होगा, और दूसरा लगातार कोई ना कोई करता रहा तो एक जीव के लिए अंतर्मूर्त, तो असंख्यात जीवों के लिए पल्ले का असंख्यात विभाग। अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का काल सर्वदा है। इसी प्रकार सब नारकी सब तिर्यंच मनुष्य सामान्य देव भवनवासियों से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देव सब एकेंद्रिय सब विकलेंद्रिय पंचेंद्रिय अपर्याप्त पांचों स्थावर काय त्रस अपर्याप्त पांचों मनोयोगी पांचों वचन योगी काय योगी औदारिक काय योगी कौमा लेना जहां नहीं है औदारिक मिश्र काय योगी वैकृत काय योगी स्त्रीवेदी पुरुषवेदी नपुसक वेदी क्रोधी मानी मायावी लोभी तीनों अज्ञानी असंयत शुक्ल के सिवा शेष पांचों लेशा वाले संगी असंगी और आहार को में जानना चाहिए। असंगी इसलिए लिए कि वो उत्कृष्ट के साथ उसमें जन्म लेने वाले लेना। इतनी विशेषता है कि मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी और असंयतों में उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, एक समय वहां घटित नहीं होता। देखो यहां मनुष्य को लिया है, पर्याप्त मनुष्यों को नहीं लिया, मनुष्यनी को भी छोड़ा। क्यों? वो होते ही संख्या थे, लगातार कोई ना कोई मनुष्य उत्कृष्ट करता रहेगा तो एक जीव अंतर्मूर्त करेगा, तो संख्यात जीव कितने काल तक करेंगे? वो तो पल्ले का असंख्यात भाग नहीं होगा, संख्यात ही काल होगा ना उसका, संख्यात अंतर्मूर्त। तो उसमें उत्कृष्ट काल भी अंतर्मूर्त ही कहेंगे। एक जीव का अंतर्मूर्त, संख्यात जीवों का संख्यात अंतर्मूर्त, तो भी अंतर्मूर्त ही होगा वो काल। देखो विशेषार्थ पढ़ेंगे इसका। उत्कृष्ट अनुभाग की सत्ता वाले अन्य गति के जीवों के उत्कृष्ट अनुभाग के काल में एक समय शेष रहने पर, नारकियों में उत्पन्न होने पर किसी मनुष्य तिर्यंच ने उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया, वो अंतर्मूर्त तक रहता है, वो एक समय बाकी है, तब नारक में नारक हुआ, वो नारकी में जन्म हुआ होने पर नरक में नाना जीवों की अपेक्षा भी मुनि के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य काल एक समय देखा जाता है। भी लगाए ना, एक जीव की अपेक्षा तो होगा ही, एक साथ एक जीव आए या अनेक जीव आए तो उनका भी एक समय। हाँ, यहाँ मरण की बात नहीं ली उन्होंने, एक समय वाला मरण नहीं लिया है। एक जीव की अपेक्षा तो वहां तो घटित होता है, एक्चुअली यहाँ भी होना चाहिए, हो ही जाएगा, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग का बंद किया किसी एक या अधिक नारकी ने और एक समय में मरकर अन्य गति में चला गया, ऐसा ले सकते वहां पर। यहां नहीं दिया, इसलिए यहां उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल एक समय कहा, तथा यहां उत्कृष्ट अनुभाग वालों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण ओघ के अनुसार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी असंख्यात और अनंत संख्या वाली मार्गणाएं हैं उनमें उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण बन जाता है। कारण कि ऐसी सब मार्गणाओं में लगातार उत्कृष्ट अनुभाग वाले असंख्यात जीव ही होते हैं। और असंख्यात अंतर्मूर्तों का योग पल्ले के असंख्यात भाग से अधिक नहीं होता, ये बात है। ऐसे असंख्यात हमने पहले प्रमाण में देखा था, उत्कृष्ट वाले जीव कितने हो गए? असंख्यात हो गए। अब एट ए टाइम भी असंख्यात हो सकते हैं, उनको एक के पीछे एक करो तो असंख्यात अंतर्मूर्त हो गए, पहले का समाप्त होते होते दूसरा फिर उसमें आ गया, तो असंख्यात अंतर्मूर्तों का जोड़ पल्ले का असंख्यात भाग होगा। इनमें अनुत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति वाले सर्वदा पाए जाते हैं, इसलिए उनका काल सर्वदा कहा है। यहां मूल में सब नारकी आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, यानी वहां भी वो एप्लीकेबल है, इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग वालों का काल सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है। मात्र उत्कृष्ट अनुभाग मिथ्या दृष्टि के होता है और इसका एक जीव की अपेक्षा भी जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अतः मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी और असंयतों में नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभाग वालों का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के जिस प्रकार अन्य मार्गणाएं बदल सकती है उस प्रकार ये मार्गणाएं नहीं बदलती है। यानी मिथ्या दृष्टि रहते हुए वो नारकी से तिर्यंच हो सकता है, परंतु मिथ्या दृष्टि के रहते हुए मति अज्ञानी से सम्यक ज्ञानी नहीं हो सकता, ये बात बताना चाहते। यानी मिथ्या दृष्टि है तो मत्य ज्ञानी ही रहेगा, ख्याल में आई थी बात। परंतु मिथ्या दृष्टि है तो तिर्यंच मार्गणा बदलकर नारकी हुआ, नारकी बदलकर मनुष्य हुआ, मनुष्य बदलकर देव हुआ, तो वहां एक एक समय घटित हो सकता है। जगन्य काल एक समय वहां घटित होता है अन्य पर्याय में से उत्कृष्ट के साथ आए हुए के। परंतु मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि रहेगा, मत्य ज्ञानी ही रहेगा। मति अज्ञान तो जब तक मिथ्यात्व है तब तक तो चालू ही है, और मिथ्या दृष्टि के ही ये उत्कृष्ट अनुभव संभव है, इसलिए उसमें तो जघन्य काल अंतर्मूर्त ही होगा, उससे कम नहीं होगा, नाना जीवन की अपेक्षा भी। अब बाकी बात कल से ले लेंगे, अभी समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे